कि इस समय में मुझको प्रमाण देना है। यदि मैंने तन मन वचन से किसी भी दूसरे व्यक्ति को राम के अतिरिक्त मैंने नहीं स्पर्श किया है, दिवस अवस्था में किसी व्यक्ति ने हमारा शरीर स्पर्श कर दिया वो बात अलग रहे, किंतु जानबूझ करके नहीं किया है, मन ने स्पर्श नहीं किया है, मैंने इसका विरोध किया। तो हे धात्री देवी, मेरी मैया, तुम जल्दी से प्रकट होकर अपनी गोदी में ले ले। तीन बार ऐसा कहा, साथ साथ में पृथ्वी फट गई, सुंदर सुन्हे का सिंहासन आया, उसमें सीता जी को वो पृथ्वी देवी आई, वो भी एक लक्ष्मी जी है, और सीता जी को अपनी गोदी में ले लिया और एक सेकंड के अंदर पटक छेप हो गया वो पृथ्वी। राम जी दिख तल मला करके हाहाकार कर उठे, सभा हाहाकार कर उठी। राम ने कहा, जैसे धरती पृथ्वी तो मेरी सास है, इसे मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तू जल्दी से मेरी पत्नी को दे, और नहीं तो तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा, अपने बाणों से धूल में मिला दूंगा। वाल्मीकि ने कहा, वृथा रोष मत कीजिए, इति श्री वाल्मीकि रामायणम ये हो रहा है। अब ये रामायण की समाप्ति है, सीता जी गई बैकुंठ में, अयोध्या लोक में, अब आपको भी चलना है, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए, आप लौकुश को राज्य दे करके, अपने भाइयों के बेटों को राज्य दे करके आप सभी लोग पधारिए। रामचंद्र उनके कहने से शांत हो गए, अयोध्या लौट गए और जितने पूर्वासी से सब लोगों को लेकर के सरजू के यहाँ पास गए। वहां पर गुप्तार घाट नाम का एक घाट है, बस वहीं जा करके गंगा सरजू में डुबकी लगाई और सभी लोग चतुर्भुज होकर के उनके साथ में चले गए। तीसरी सीता चरित्र, ये सीता जी का चरित्र है, आज इनका ये जन्म हुआ है। दूसरी बात, आज जाह्नवा देवी जी का जन्म तिथि है। जाह्नवा देवी कौन है? नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, जैसे राम की शक्ति सीता जी हैं, कृष्ण की शक्ति राधा जी हैं, बलदेव जी की शक्ति कौन? रेवती जी हैं। ऐसे बलदेव प्रभु जी हैं नित्यानंद, और ये रेवती जी ही जाह्नवा देवी। ये जाह्नवा देवी बंगाल में एक कालना है स्थान, गंगा के तट पर कालना है, इधर पूर्व तरफ में और पश्चिम तरफ में शांतिपुर है, अद्वैताचार्य जी का घर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहीं पर दो भाई रहते थे महाप्रभु के समसामयिक, गौरीदास पंडित जी और सूर्यदास सरखेली, ये दोनों भाई थे। गौरीदास की परम भक्त थे, सूर्यदास सरखेल उनके छोटे भैया थे, भक्त थे, किंतु कहीं मुसलमानों के कहीं राज्यसभा में अकाउंटिंग का कार्य करते थे, लिखना, अकाउंट रखना। जो अकाउंट रखते हैं उनका नाम होता है सरखेल, पूरी में भी बादशाह थे वो पदार्थ, उनके भी लेखक थे सर, अकाउंट सब समय रहता है, तो ये अकाउंट रखते थे, इसलिए उनका नाम हो गया सरखेल। किंतु थे बड़े भक्त, इन्हीं की दो कन्याएं थी, ये जानवा और वसुधा। जानवा जी बड़ी थी और वसुधा जी छोटी थी, कि वसुधा जी बड़ी थी ये याद नहीं। फिर जानवा के गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ, वसुधा जी जो छोटी थी उनके गर्भ से एक बच्चा हुआ, उसका नाम था वीरभद्र, और एक लड़की थी, लड़की का नाम मुझे याद है। तो ये जाह्नवा जी अपने जब विवाह नहीं हुआ था उस समय अपने पिता के निकट अधिक न रख करके वो रहती थी अपने जेठा के यहाँ, जेठा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ताऊ जी, ताऊ जी के पास में रहती थी। ताऊ जी ऐसे भक्त थे गौरीदास पंडित जी, गंगा के किनारे घर है, कुटी है, विवाह शादी नहीं की, छोटे भाई ने किया, परम भक्त हैं। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी को ऐसा आकर्षण किया कि महाप्रभु उनसे मिलने के लिए आते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु जी अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में आए और वहां से गंगा पार करके कालना में इनसे भेंट करने आए। इन्होंने बड़ा आदर किया। एक दिन रहे, दूसरे दिन जब जाने के लिए तैयार हुए तो जी प्रभु आज एक दिन और रह जाइए, और अपने हाथों से सुंदर रसोई, साग दाल अन्न और कच्ची रसोई जो होती है सुंदर से सुंदर बना देते। विशेष करके महाप्रभु जी को साग बहुत पसंद था, वो भी बनेले ये पौधों का। एक दिन रहे, दो दिन फिर जाने के लिए तैयार, प्रभु एक दिन और ठहर जाइए। ऐसे करते 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 उनको 15-20 दिन उनको रख लिया, जाने नहीं दे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो मुझे जरूर जाना चाहिए, प्रभु आपके बिना तो मैं जी नहीं सकता। अच्छा तो ठीक है, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा, अपनी प्रतिमूर्ति वहां से नवद्वीप जाकर के भेज दूंगा। तो नवद्वीप में गए और जिस नीम के पेड़ के नीचे जिनका जन्म हुआ था उसी पेड़ के नीम से दो मूर्तियां बनी लकड़ी की, और उन लकड़ी की मूर्तियों को, नीम के मूर्तियों को भेज दिया गया। वहां जाकर के अब गौरीदास जी बहुत ही सुंदर देख करके बड़े प्रभावित हुए और उनकी पूजा करने लगे। उनसे कभी बातचीत भी करते, कभी नमक कम हो जाता तो कहते जरा नमक ले आना, तो कोई चीज कुछ हो जाता तो वो मूर्ति उनसे मांग करके खाती और बड़े प्यार से रखते। एक दिन फिर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी उनके घर में आए। अब दो ये और दो वो, वहां पर उनको लिए भोग अर्पित होता है और यहाँ पर उनका मन वेद जाता है, ये लोग भी प्रसाद पाते, वो भी। एक दो दिन हो गए, गौर नित्यानंद ने कहा जैसे अब तो बहुत दिन हो गए भाई, 2-3 दिन हो गया, अब हम लोग चलेंगे नवद्वीप में मायापुर, प्रभु एक दिन और ठहर जाइए। अच्छा फिर वैसा ही करने लगा, भाई एक बात करो, उन दोनों को या तो रखो या दोनों हमको रखो। कहेंगे अच्छी बात है ठीक है। तो जब ये लोग चलते नहीं आप प्रभु रहिए, ये लोग जाए, और जब ये लोग रह जाते तो वो लोग चलने लगते, कहे प्रभु आप रहिए ये लोग जाए। इस तरह से दोनों को रोकने की चेष्टा करते। और ऐसी भी चित्र बात हुई कि जब ये दोनों रहते नित्यानंद प्रभु गौरचंद्र तो उनकी मूर्तियां वहां से चली जाती, और जब ये लोग रहते तो उस मंदिर में जाकर के मूर्ति बन जाते, फिर बातचीत वैसा नहीं, एकदम ठीक अभी कल मूर्ति बन जाते। फिर उनके लिए रोने लगते कि आप लोग आइए, फिर आते तो कभी वो आ जाते कभी ये, छोड़ते नहीं। इस तरह से गौरीदास पंडित की ये भक्ति देखिए कितने भक्तिमान। अब उनकी सेवा करने वाली कभी कभी गौरीदास जी उनकी सेवा में नियुक्त करते थे। बचपन से कैसी शिक्षा हुई, यह जब बड़ी हो गई तो नित्यानंद प्रभु उस घर में पधारे और इन लोगों ने निवेदन किया कि आप इससे शादी कीजिए। उनकी कौन सी लीला, क्योंकि वही रेवती जी ये बनी है, और एक थी रेवती और एक बारूनी, एक बारूनी एक रेवती, दो बलदेव जी की पत्नियां थी, वो दोनों वसुधा और जानवी। अनंग मंजरी तो कृष्ण के लीला थी, जानवी जी हैं अनंग मंजरी। तो इस तरह से उनकी शादी थी नित्यानंद प्रभु से दोनों की। होने के बाद में उनके साथ में गई, कुछ दिन रहने के बाद में वसुधा जी के पुत्र हुआ वीरभद्र। वो जब बड़ा हुआ, कुछ बड़े हो गए तो नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी अप्रकट हुए, फिर नित्यानंद हो गए, और सब लोग धीरे धीरे उनके लीला के जितने परिकर थे वो सब लोग चले जाते। अब जन्मा जी रह गई, वसुधा जी रह गई, इनका पुत्र ही रह गया। पुत्र करीब करीब 12-13-14 का हो गया, 15-16 का हो गया, किंतु अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली। नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, उनके पुत्र ये हैं। लोगों ने परामर्श दिया कि तुम किसी से हरिनाम दीक्षा जरूर लो। जब महाप्रभु जी ने दीक्षा हरिनाम लिया है, नित्यानंद प्रभु जी ने भी लिया है, तुमको जरूर लेना चाहिए। किंतु वो कहते थे मैं नित्यानंद प्रभु जी का पुत्र हूँ, अब हमसे बड़ा कौन होगा, हम नहीं लेंगे। हम लेंगे उसी से जो नित्यानंद प्रभु के बराबरी का कोई भक्त हो, तब मैं लूंगा। ऐसा तत्वज्ञ हो, ऐसा प्रभावशाली हो। तो ऐसा कोई प्रभावशाली नहीं दिखता था। लोगों ने कहा जैसे तुम एक बात करो, अपनी जो मैया है ये जाह्नवी देवी, उनसे तुम दीक्षा मंत्र ले लो। कहीं मैं महिला से नहीं लूंगा, कोई भी महिला कैसे भी हो। ठीक है, तुम उनको महिला समझता है, देवी नहीं समझता। अरे वो अनंग मंजरी की अवतार है, वो रेवती जी की अवतार है, तुम नहीं समझता। कहा जी भाई जो कुछ भी हो मैं महिला से नहीं लूंगा, हमारी मैया है। एक दिन की बात है कि एक दिन वो अंदर महल में बाथरूम में गई। महिलाएं ऐसे होती हैं बंगाल की कि अपने कपड़ों को छोड़ करके कुछ साफी या गमछा होता है, एक गमछा ऊपर एक गमछा नीचे, दो गमछों का व्यवहार करती है। हम लोग भी दो गमछों का ही व्यवहार करते हैं। तो एक गमछा नीचे वो उन्होंने ले लिया, बाई चांस वो एक दूसरा गमछा मिला नहीं, उसी से अपना नित्य क्रिया किया और होने के बाद में वो कुएं पर आई, कुएं से पानी खींच रही है स्नान करने के लिए, और ऊपर वाला कपड़ा नहीं है, नीचे वाला तो है। और इतने में 16 वर्ष का वो लड़का हो गया है वीरभद्र, उसको कोई एक खास जरूरत हुई मैया से, जानवा देवी से। तो वो अंदर महल में आ गया कुएं के पास में। अरे मैया मैया तू कहाँ है, मैया कहाँ है, कहते हुए जब कुएं के पास आया तो लड़का तो है बड़ा हो गया है, उसे भी लज्जा है। उनके वस्त्रक्षल इत्यादि खाली हैं, ऊपर से केवल नीचे से ये पहनी है, नीचे वाला ऊपर वाला तो कोई कपड़ा है नहीं, इसे बड़ी लज्जित थी। लज्जित थी, अब क्या करें, आधा बाल्टी आधी दूर तक आई है कुएं में, हाँ दोनों हाथ से अभी खींच रही हैं। इतने में दो हाथ और निकले, चार हाथ हो गए, दो हाथों से इधर में ढक लिया और दो हाथों से खींचने लगी। देखते ही एकदम दंडवत प्रणाम हो गए, भाई ये तो सचमुच में ये तो स्त्री महिला तो है नहीं, ये तो चतुर्भुज है, ये तो ये सचमुच में जो लोग कहते हैं ये वारुणी देवी की हैं, रेवती जी हैं। रेवती जी की भी ऐसी शक्ति थी। बलदेव जी कभी कभी द्वारका में चतुर्भुज भी हो सकते हैं, उनकी पत्नी भी हो सकती हैं, ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। सलाम किया, फिर निकट कल चले आए। फिर जब उन्होंने स्नान स्नान किया तो उनके पास में आकर के बोले जी आज ही आपको हमको दीक्षा देनी पड़ेगी। तब उन्होंने अनुग्रह करके उनको दीक्षा हरिनाम और दीक्षा दिया। ये जाह्नवा जी का चरित्र है। उस समय वैष्णव समाज में जब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी नहीं रहे, तो उस समय में बंगाल और ब्रज और उधर में जगन्नाथपुरी, तीन जगह तो हम वैष्णव के क्षेत्र हम लोगों के हैं, गौड़ीय वैष्णव के, सब लोग इनको अपना श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं। वैष्णव जगत की सम्राट थी, उनके बिना आदेश का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था। उस समय जिसको जो कहती थी वो शिष्य के रूप में इनके आदेश का पालन करता था। यहाँ तक कि एक व्यक्ति था बहुत सुंदर पाठक और अपने को बहुत भक्त समझता था, बहुत त्यागी बैरागी था, उसका नाम था रूप कविराज। एक दिन वो प्रवचन कर रहा था और ये हाथ में माला लेकर के हरे कृष्ण कर रही, आंख बंद करके सुन रही। उसने कहा कि यदि भागवत की कथा हो उस समय माला करना और हरिनाम करना आंख बंद करके ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये नहीं समझा कि हमसे लाखों गुण ऊपर हैं, ईश्वरी हैं, नहीं समझा, उनको शासन करने की चेष्टा की। और भी दो ऐसी बातें हुई जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत को उलट करके दूसरी तरफ में देखना चाहा। उनके सिद्धांत से ठीक नहीं, हमारा सिद्धांत ठीक। उन्होंने आदेश दिया उसकी और बातों को देख करके ये वैष्णव समाज से इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं घोषणा करती हूँ कि ये वैष्णव समाज में नहीं, ये पतिबाढ़ी है। पतिबाढ़ी मैंने धर्मराज में बहुत अपने को बड़ा समझता है किंतु है नीचा। बस सुनते ही वैष्णव समाज से उसका बहिष्कार कर दिया गया, उसको अब कोई पूछता नहीं था, ऐसे प्रतिभाशाली थी। जिस समय में नरोत्तम ठाकुर जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके कीर्तन पदावलियां हैं। नरोत्तम ठाकुर जी जब वृंदावन से लौट करके घर गए तो उन्होंने ठाकुर जी की प्रतिष्ठा कराई, उसमें श्रीनिवास आचार्य आए और इनको भी बुलाया गया। ब्रज से, पुरी धाम से और मथुर गौड़ मंडल के जितने भी भक्त लोग थे सभी लोग वहां पर आए, कनिष्ठ मध्यम उत्तम सभी लोग आए। उस समय में श्रीनिवास जी जब भागवत का पाठ कर रहे हैं तो जिस समय में राष्ट्रस्थली का वर्णन करने लगे उस समय राष्ट्र वहां पर सब अपने आप प्रकट हो गया, जितने श्रोता थे उन लोगों ने देखा। जब भागवत समाप्त हो गया तो देखा जो कुछ नहीं। इसके बाद नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन आरंभ किया, उनकी पदावलियों में बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, राधा कृष्ण प्राण मोद जुगल किशोर और राष्ट्र के भी पद हैं। जबकि उन्होंने उनका अपना सुर ताल लय मान शास्त्रीय संगीत करते थे। जब मृदंग बजने लगा और जब वो कीर्तन करने लगे, नित्य करने लगे, एकदम चैतन्य महाप्रभु अपने समस्त परिकरों के साथ में प्रकट हो गए। जो अप्रकट हो गए थे तब तक महाप्रभु के करीब करीब 250 वर्ष बाद में वहां पर प्रकट हो गए, कीर्तन विराट होने लगा। थोड़ी देर में राधा कृष्ण सभी वहां पर एकदम उपस्थित हो गए बदल करके, और राष्ट्र जैसा स्थिति हो गई, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब कीर्तन बंद कर दिया तो देखा जैसे कुछ नहीं। ऐसे ऐसे ये लोग थे गुणी, ऐसे ऐसे परम भक्त थे। उस समय में ये गई, इनके चरण धोए अपने आप नरोत्तम ठाकुर जी ने और पान किया, सब भक्तों को दिया। तो बतलाइए जैसे ये कैसे होंगी, ये कितनी प्रभावशाली ये थी। महिला होने से उसको ये कोई इम्पोर्टेंस इंसान नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे संप्रदाय में इसका भी विधान है कि उनको उचित आदर दिया जाए, उसके भक्ति के तारतम्य से सबको जहां तक हो। तो उस समय में विग्रह जो प्रतिष्ठा हुई उसका सभापतित्व या अभिनायकत्व इनका था, सब लोग इनकी पूजा करके इनका आदर करके अब विग्रह प्रतिष्ठा या पाठ प्रवचन सब करते थे। उस समय जो विग्रह प्रतिष्ठा हुई 6 ठाकुर थे, 10 राधा कृष्ण की, राजबिहारी मदन मोहन, गोविंद गोपीनाथ, राधा मदन गौरांग, गौर नित्यानंद, बल्लभी कांत, गोपीकांत, ये तरह से 6 विग्रहों की स्थापना। बहुत धूमधाम से मचा, भारतवर्ष का एक प्रधान क्षेत्र बना गया। तब से मूर्ति जब स्थापित हुई तब एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न, ठाकुर जी की कोई मूर्ति है या नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति माननी चाहिए या नहीं, उसे क्या होता है, आइडोलेट्री जिसको कहते हैं, आइडल पूजा, भूत पूजा, मुसलमान लोग कहते हैं भूत पूजा, और कोई कहते हैं मूर्ति पूजा, बेकार की चीज है जिसको मोहम्मद गोरी ने तोड़ दिया, जिसकी सब लोग पूजा कर उसको, ये भगवान उस पत्थर को मानते हैं। भारतवर्ष के सनातनी हिंदू के अतिरिक्त भगवान की मूर्ति को लोग नहीं मानते, विशेष करके 2 जातियां नहीं मानती, ईसाई धर्म वाले और दूसरा मुसलमान लोग नहीं मानते। आजकल इन्हीं की संख्या अधिक है, हम लोग अभी जगत में विश्व में हम लोग अल्पसंख्यक वाले हिंदू रह गए, और इसमें से भी कटता जा रहा, बौद्ध निकल रहे हैं, नीचे जाति वाले शेड्यूल कास्ट वाले धीरे धीरे निकल रहे हैं, राजनैतिक आर्य वाले ये लोग निकल रहे हैं, यहाँ तक कि बंगाल में जो रामकृष्ण मिशन वाले हैं वो लोग भी अपने को अब हिंदू नहीं कहना चाहते हैं, उनको कुछ लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए वो लोग भी चाहते हैं कि हम अल्पसंख्यक रहे तो हमको कुछ सुविधाएं मिले। अब ये धीरे धीरे इन लोगों में भी विभाग अब सब राजनीतिक लीडर लोग करा रहे हैं। तो उन लोगों का कहना यह है, भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, कोई आकार नहीं उनका है, किंतु हमारे सनातन धर्म में हम हिंदुओं के लिए ये मूर्ति पूजा एक रीढ़ के समान है। जैसे शरीर में ये रीढ़ होती है, प्राचीन काल से अब तक चलती आ रही है, अभी तक लोग कुछ कर नहीं सके, संख्या कुछ कमी है किंतु मानने वाले की कमी नहीं हो रही, अभी भी वैसे ही चल रही है, इसलिए बहुत से लोग बौखला जाते हैं। और इस पर हम साधारण रूप में एक शास्त्रीय विचार कर रहे हैं और लौकिक युक्तियों का भी विचार कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है, जिसकी मूर्ति मानी जाती है, यदि भगवान की मूर्ति मान ली जाए तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकते, समझ रहे हैं, यह सर्वव्यापी है उसका कोई आकार नहीं हो सकता है, वो एक ही जगह में रहेगा, सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उसको सर्वव्यापी नहीं माना जा सकता, किंतु शास्त्रों में और साधारण रूप में ये बात प्रचलित है और सत्य है कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो ये मेल नहीं खाता है, परस्पर सिद्धांत स्थिर हो जाए। दूसरी बात, जिस चीज का आकार होता है उसको सुख और दुख सहना पड़ता है और उसकी मृत्यु भी होती है, जन्म भी होना है, जितने भी आकार है। तो यदि भगवान का आकार माना जाता है तो उनकी जन्म मृत्यु मानना पड़ेगा और उनको सुख दुख होता है, दोनों, ये दोनों मानना पड़ेगा। किंतु ब्रह्म जो है, अल्लाह खुदा है, भगवान है, इनको यदि माना जाता है आकार है तो उनका भी जन्म और मृत्यु मानना पड़ेगा, किंतु उनका जन्म मृत्यु नहीं माना जाता, उनको सुख दुख से वो अतीत है, अवांग मनसो गोचर है, इसलिए उनका रूप नहीं होना चाहिए। ये उनकी प्रधान दो युक्तियां हैं। अब हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में विचार करें, एक घंटा शायद हो गया है, मैं चाहता था ये विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करूं, अब आज संभव नहीं, मैं संक्षेप में दो एक बातें बतला रहा हूं। पहली बात तो कुरान में एक वाक्य है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। क्या मतलब, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, जैसी उनकी मूर्ति है, इमेज है, उसी के समान ही मनुष्य को बनाया। यदि यह बात ठीक है तो उनका गॉड का भी रूप है और ऐसा ही है। पहली बात तो ये, ईसाई लोगों को या तो उस वाक्य को निकाल करके फेंक देना चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कि बाइबल में इनका विश्वास नहीं है। दूसरी बात, मुसलमानों का कुरान ग्रंथ है, उसमें लिखा है इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही। उच्चारण तो मेरा ठीक से नहीं हो रहा है, ये लोग फारसी जानने वाले हैं, कि तभी ये है किसी न किसी रूप में। तो ये जो खुदा तल्ला है, उनकी जो जस्मानी जो शरीर है, उनका सूरत है, अपने सूरत के अनुसार में इस सब जगत की सृष्टि की। तो उनकी सूरत है, सूरत माने क्या, आकार है, रूप है। और हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में लिखा है सत एवं सम्य इदम अग्रासी, सत एवं सम्य, मैं सत हूं, हमारा आकार है, हमारा रूप है, एको बहुश्याम, मैं एक होकर के बहुत होता हूं, इदम अग्र आसित, मैं पहले भी था और पीछे से भी मैं प्रकट होता हूं, और अपने समान ही ये सबको बनाया है। स अक्षत, उन्होंने इच्छा की क्या जगत हो, ऐसे बाइबल में भी एक शब्द है, उन्होंने इच्छा की ये जगत हो तो जगत हुआ। हमारे शास्त्रों में भी एक बात, हमारे शास्त्रों से ही ये सब है 1900 कितना आज है 1995 ना 1995 वर्ष हुआ ईसा का, उसके पहले तो ये था नहीं। और हमारे वेद तो बहुत पहले के हैं, इसलिए हमारे वेदों से लिए गए। और कुरान शरीफ 1400 कितना दिन हुआ है, वो भी हमारे शास्त्रों से ही कुछ लिए गए हैं, उनका कुछ अपभ्रंश ये सब चीजें हैं। तो इसमें भी वैसा लिखा गया, गॉड मैंने क्या, जी ओ डी, जनरेटर। किस चीज का जनरेटर? जगत का। और स्ट्रक्चर, डिस्ट्रक्चर, पालन करने वाला, पोषण करने वाला और उसका भरण पोषण करने वाला। किसका भरण पोषण करें? यदि अपने रूप के समान बनाया, जिसमें सृष्टि जो करते हैं वो कारण माना जाता है और इस जगत को कार्य माना जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कॉज एंड एक्शन थ्योरी। और एक है सब कारणवाद, इसी का अनुवाद है हिंदी में सब कारणवाद। ये दार्शनिक शब्द है, इस पर जब विचार करते हैं, कारण में जो चीज है वही कार्य में दिखाई पड़ता है, अन्यथा जो कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं हो सकता। आम के बीज में जो है वही अंकुरित होकर के उसी से आम ही का फल होगा, वृक्ष होगा, उसे बबुल नहीं हो सकता है, इमली नहीं हो सकती ना? सरसों का पौधा उसे आम नहीं हो जाएगा ना? जो चीज जैसा है जिसमें उसमें जो पोटेंशियल है वही प्रकट होकर बैठे। यदि इस ब्रह्म में जगत के जो क्रिएटर हैं उनमें कोई रूप ही नहीं है, तो ये रूप वाले विभिन्न रूपों को देखते हैं, ये कहां से आया? आम के बीज में आम का पेड़ है कि नहीं है? जरूर है, हम देखते हैं। इसलिए ब्रह्म में जरूर जितने भी रूप हैं वो रूप हैं। तो फिर शास्त्रों में निराकार किस लिए कहा गया? मैं संक्षेप में दो एक बात बतला, पीछे बतलाऊंगा, इसकी व्याख्या करूंगा किसी दिन। तो बतला रहे हैं निराकार शब्द है, निर्गुण शब्द है ना? निर्गुण, निराकार और निर्विशेष, निःशक्ति, निरुपाधि इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें गुण प्रधान मौलिक शब्द है। गुण रूप, और रूप से अरूप बना है, और रूप से रूप नहीं बना, रूप में अ लगाओ तो फिर से ये हो गया अरूप। ये एक बीमारी है, किसी को नाक से पानी आ रहा है, शरीर गर्म है, छींके हो रही हैं, क्या समझो? जुखाम है। ये जुखाम के ये लक्षण हैं। तो रूप है, किसी कारण से उसमें अरूप लगाया तो पीछे से अरूप बना, ये बीमारी है। किसके लिए? जो नहीं देखते हैं उस रूप को, उनके लिए अरूप कहा गया। क्यों नहीं देख सकते? चिन्मय वस्तु है, हमारी आंखें उसको नहीं देख सकती। अभी चीज को समझने के लिए ऐसे समझिए, पानी है, पानी को किसी से पूछिए ये इसका रूप क्या है, साइंटिस्ट क्या कहेगा? वो कहेगा जब देखेगा जैसे जिस चीज में रखते वैसा ही बन जाता है, दिखाई तो पड़ता है ना, तो जिसका रूप ही नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा? इसका कॉलर क्या है? जैसा ही रंग डाल दो वैसा ही हो जाए, इसलिए साइंटिस्टों ने उसको कहा जिस कॉलरलेस, जिस रूप में उसको रखो वैसा ही हो जाएगा, इसलिए शेपलेस है। तो शेप कि नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, कोई स्वाद नहीं है। पानी में जरूर अपना स्वाद है, तो अभी कोई चीज मिला दिया जाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये नमकीन पानी है, ये मीठा पानी है, ये ऐसा पानी है ऐसा, किंतु अपना उसका कोई रूप है, गुण है, टेस्ट है, बट यू कैन नॉट डिफाइन। लाखों शेप धारण कर सकता है, यू कैन नॉट डिफाइन दैट व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर, व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर,
व्हाट इज द टेस्ट ऑफ
वाटर। इसलिए उसको निराकार इत्यादि कहते हैं। देख रहे हो? नहीं कर सकते। जब एक पानी के भी तुम रूप गुण इत्यादि को नहीं देख सकते, तो पानी को भी बनाने वाला उससे में ये सुख जाए, उसके रूप को तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? इसलिए उसको निराकार कर दिया। क्यों? अचिंता खलु भावा न संस्कार के न जो जयेत, जो प्रकृति से अतीत है, अवांग मनसो गोचर है, तुम अपनी बुद्धि से कैसे उसको नाप सकते हो, उस पर कैसे विचार किया। इसलिए शास्त्रकारों ने इसलिए कहा कि प्राकृत बुद्धि से नहीं पकड़ में आएगा, इसलिए वो निराकार है, वो निर्गुण है। भगवान में यदि गुण नहीं है तो ऐसे भगवान से हमें जरूरत क्या है, जो कि जिसमें दया भी नहीं है, जिसमें प्रीति नहीं है, उस भगवान को मान करके क्या होगा। तो उसे तो पत्थर अच्छा है, पत्थर जैसा निष्ठुर है वैसे निष्ठुर है, आकाश जैसे निराकार हो गए तो आकाश की कोई पूजा करता है। इसलिए मुसलमान लोग भी, हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी या दूसरे बौद्ध लोग भी यदि मूर्ति नहीं मानते हैं तो मस्जिद किस लिए खड़ा करते हैं, जरूरत क्या के खड़ा उसमें किस लिए। और ये बाइबल वाले क्या करते हैं, चर्च है ना, चर्च की जरूरत क्या है, खुले आकाश में निराकार का ध्यान भी तो नहीं होगा, उस तरह की कोई वस्तु नहीं हो सकती है। इसलिए ये सबको रिकल्पनाएं हैं, उनको किसी न किसी रूप से उनको मानना पड़ता है, किसी न किसी रूप से ले। तो आज यहीं पर समाप्त करूं, और जब फिर आएंगे तो विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या करके और भी उदाहरण और भी सब युक्तियां सुंदर सुंदर, जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि भगवान का रूप है, जीवात्मा का रूप है, ये जो रूप है ये रूप नहीं है, अभी जो देख रहे हैं इसकी कोई स्थिति नहीं है, नित्यता नहीं है, ये तो मिट्टी है। इसलिए हम दूसरे दिन इसको बतलाएंगे शास्त्रों से प्रमाण लेकर के, विचार लेकर। आज ये Thank you.